आशी के बुलाने पर आयु ओबेरॉय विला आ चुकी थी। वो आशी की हेल्प करने के लिए आई थी। तभी उस बीच आरव और वेद कमरे में पहुंचे। आयु की वजह से उस कमरे में थोड़ी सी देर में मेडिकल रूम जैसी स्मेल आ रही थी। इसके बारे में आरव और वेद बातें कर रहे थे। वेंटिलेशन के लिए वेद खिड़की खोलने के लिए खिड़की की तरफ पड़ रहा था। आयु उस खिड़की के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। अगले ही पल वेद आयु के सामने से पर्दा हटाने वाला था, तभी मिस्टर ओबेरॉय भी वहीं पर आ गए। मिस्टर ओबेरॉय के आने पर वेद ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा, तो वहीं मिस्टर ओबेरॉय की नज़र आयु के पैरों पर चली गई थी। उसके बाद उन्होंने आशी के चेहरे की तरफ देखा, जो नर्वस लग रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आरव की तरफ देखकर कहा, लगता है कमरे की अभी अभी सफाई हुई है, तभी अजीब सी बदबू आ रही है। आप लोग बाहर चलिए, मैं आता हूँ। आशी समझ गई थी कि जरूर उन्होंने आयु को देख लिया है। आशी ने मिस्टर ओबेरॉय की तरफ देखकर धीरे से कहा, पापा आप इन्हें बाहर लेकर जाइए, मैं बस एक मिनट में आई। आशी तुम इन्हें बाहर लेकर जाओगी, मैं आ रहा हूँ, अर्जुन ने सख्त शब्दों में कहा और आशी को वहां से जाने का इशारा किया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा देखकर आशी तुरंत वहां से चली गई, तो वहीं आयु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो समझ गई थी कि उसकी छुपने की कोशिश नाकामयाब हो गई है। आशी आरव और वेद को बाहर लेकर गई। उनके जाते ही मिस्टर ओबेरॉय ने रूम का दरवाजा बंद किया और पर्दा हटाया। मिस्टर ओबेरॉय ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, बाहर आओ। आयु पर्दे से बाहर निकली और मिस्टर ओबेरॉय की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने तुरंत शालू को वहां पर बुलाया। शालू ने आयु को उस हालत में देखा तो वो हैरानी से बोली, तुम MBBS ही कर रही हो ना, कहीं किसी कसाई के हाथों काम नहीं कर रही, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। शालू के बाद मिस्टर ओबेरॉय ने कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं उसे इस तरह खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। आशी हमेशा से ही सिंसियर थी और ये मैसी, देखो अकेले रहने पर इसने अपनी कैसी हालत बना रखी है। अगर इस हालत में आरव ने इसे देख लिया होता तो आशी का रिश्ता टूट जाता। उनकी बात सुनकर आयु को गुस्सा आया तो वो मिस्टर ओबेरॉय की आंखों में देखते हुए बोली, लॉजिकली देखा जाए तो ये रिश्ता टूट जाए उसी में सबकी भलाई है। आप ऐसे कैसे किसी आदमी के साथ मेरी बहन की शादी कर सकते हैं जो जमीन के लिए उसका हाथ मांग रहा है, और दूसरी बात, उसे मुझसे शादी करनी है या फिर आशी से जो मुझे देखकर वो रिश्ता तोड़ देगा। अपना मुंह बंद रखो और हुलिया ठीक करके बाहर पहुंचो, मिस्टर ओबेरॉय ने सख्त आवाज में कहा। उन्होंने आयु को पूरे 2 साल बाद देखा था। आयु को बाहर आने का बोलकर मिस्टर ओबेरॉय कमरे से बाहर चले गए। वहीं उनके जाते ही आयु ने मुस्कुराकर शालू की तरफ देखा और उनके गले लगने के लिए आगे बढ़ी। आशी की तरह शालू भी पीछे हट गई और मुंह बिगाड़कर कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर वो रिश्ता तोड़े या ना तोड़े, लेकिन तुम्हारे आसपास आने पर पूरे कमरे में जो बदबू फैली है उसके बाद जरूर रिश्ता टूट सकता है। फॉर गॉड सेक मेरे पास मत आना, तुम्हें पता है मुझे बैड ऑर्डर से उल्टी आने लगती है, पता नहीं मेरी खूबसूरत सी बेटी की क्या हालत कर दी तुमने। हद है, कैसी माँ और बहन हो आप लोगों, ऐसे नहीं कि इतने सालों बाद मिलने के लिए आई है और यहाँ तो करीब तक नहीं आने दे रहे हैं, अब तो मेरे हाथों का खून भी सूख गया है, आयु ने चिढ़कर कहा। उसकी बात सुनकर शालू ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा, अच्छा तो तुम्हारे हाथों पर खून भी लगा हुआ था। आयु तुम बिना नहाए हुए नीचे नहीं आओगी, मुझे ना तुम्हें सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए था, मुझे क्या पता था तुम अपनी ऐसी हालत कर लोगी, तुम्हारी वजह से ऐसे ही तुम्हारे पापा मुझे दिन रात ताने मारते रहते हैं और तुम्हारी ये हालत देखने के बाद तो वो यही कहेंगे कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। शादी ही सब कुछ नहीं होती, और हाँ मैंने शादी करने के लिए लड़का ढूंढ लिया है, आयु ने मुंह बनाकर जवाब दिया। अच्छा है तुमने खुद ही ढूंढ लिया, वरना तुम्हारे साथ कोई 2 दिन रहने के बारे में भी नहीं सोच सकता। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंचो और प्लीज कोई तमाशा मत लगाना, वो भले ही डील के लिए आया होगा लेकिन मुझे वो आशी के लिए सही लगा, शालू ने उसे हिदायत देते हुए कहा और बाहर चली गई। शालू के जाने के बाद आयु वहां बेड पर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे ना दादू के अलावा और कोई नहीं समझता, वैसे इतनी गंदी बदबू आ रही है क्या जो ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। बोलते हुए आयु ने अपने हाथ को सूंघा तो सच में बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उसने उल्टी आने जैसा मुंह बनाया। अच्छा हुआ मैंने शादी के लिए डॉक्टर निर्वाण को सिलेक्ट किया, वो भी डॉक्टर है तो मुझे जज नहीं करेंगे, आयु ने हल्का मुस्कुराकर कहा और फिर बाथरूम में चली गई। वहीं आशी आरव और वेद के साथ बालकनी में पहुंची। वहां से उनके घर का गार्डन एरिया दिखाई दे रहा था जो काफी बड़ा और खूबसूरत था। आरव ने एक नज़र आशी की तरफ देखा जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। अब तो वेद को भी लग रहा था कि आरव ने आशी से शादी करने का फैसला भले ही जल्दबाजी में लिया हो लेकिन वो इसके लिए कभी पछताने वाला नहीं था। आरव ने आशी को गौर से देखा और फिर कहा, क्या हुआ तुम नर्वस लग रही हो, अगर तुम्हें इस शादी से दिक्कत है तो तुम मना कर दो, पर अगर वो लैंड तुम्हारी है तो मैं उसके डबल पैसे तक देने के लिए तैयार हूँ, तुम डील कर लो, ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा होगा। अच्छा हम पैसों को जाने देते हैं, मैं तुम्हें पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ, लाइफ पार्टनर ना सही हम बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं जहाँ मैं तुम्हें कुछ शेयर्स दूंगा और उम्र भर तुम्हें उसका फायदा होता रहेगा। आशी आरव की तरफ देख रही थी, वो पहली नजर में ही आरव से काफी इम्प्रेस हो गई थी। उसने धीरे से कहा, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है और मैं इस वजह से नर्वस नहीं हूँ कि अचानक आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गए, मेरे नर्वसनेस का कारण मेरी बहन है।
तुम्हारी बहन, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला था तुम मिस्टर ओबेरॉय की इकलौती बेटी हो और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रखी है। फिर अचानक से बहन कहाँ से आ गई? आरव ने हैरानी से पूछा। आशी ने जवाब देते हुए कहा, अचानक से नहीं आई है, मेरे साथ ही इस दुनिया में आई थी। मुझसे 10 मिनट पहले। पापा और उसकी बंटी नहीं है और वो यहाँ से जा चुकी है। मेरे कहने पर आज यहाँ आई थी और कमरे में छुपी हुई थी और उसी की वजह से वो बदबू आ रही थी। आप इन सब बातों को इग्नोर कीजिए। पापा ने उसे देख लिया है तो पक्का उसे डांट रहे होंगे और अब तक निकाल भी दिया होगा। प्लीज आप मुझ पर इतना सा फेवर कर दीजिए कि उसे यहाँ से जाने से रोक लीजिए। आशी काफी प्लीडिंग वे में बात कर रही थी और इस तरह बात करते हुए वो काफी समझदार और पोलाइट साउंड कर रही थी। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी तो आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने कमरे की तरफ फिर से जाने लगी और उसने आरव को अपने पीछे आने का इशारा किया।